अग्ने नय सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मद्युः राणमेनो हुईष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेन। कई दिन से समाधि का प्रसंग चल रहा है और समाधि में आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार की बातें चल रही हैं और इसका फल मोक्ष माना गया है। समाधि के द्वारा आत्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर करके मोक्ष की बात कही गई है। अब मोक्ष के विषय में एक तो मोक्ष यह है जीवन में रहते हुए जैसे इस देवी को 70 घंटे होने जा रहे हैं, ये भी एक प्रकार की मुक्ति ही है जिसको जीवन मुक्ति कहा जा सकता है। जीते जी मुक्ति प्राप्त होना ज्यादा अच्छा है, मरने के बाद हमें क्या पता रहेगा कैसी मुक्ति हुई कैसी नहीं हुई, कोई चले गए वो भी नहीं बतलाते आन के मुक्ति की बातें। पर वर्तमान को देख करके इस विषय में तो हम सबको प्रत्यक्षवादी ही होना चाहिए। जब मोक्ष नाम की कोई चीज है तो वो हमें इसी शरीर में इसी जीवन में और होश हवास रहते हुए प्राप्त होनी चाहिए। जीवन भी बना हुआ है, प्राण शक्ति कार्य कर रही है, होश हवास भी है क्योंकि ज्ञान का अनुसंधान कर रही है, खोज कर रही है, इंद्रियों के वेग भी नहीं सता रहे हैं, टट्टी पेशाब आदि सब बंद है 70 घंटे से। तो इससे बढ़कर के और जीवन मुक्ति क्या हो सकती है? तो ये तो है प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा रहा आत्मा के विषय की बात अब कर रहे हैं। यदि आप जो कुछ भी धर्म वर्तमान शरीर में हैं, अगर ये आप शरीर और अंतःकरण, शरीर इंद्रिय और अंतःकरण के ही ये सब धर्म मान लेवें और आत्मा का सन्निधान मान लेवें और आत्मा को एक प्रकार से इन सुख दुख से अलग मान लेवें, क्योंकि ये सब धर्म शरीर के इंद्रियों के और अंतःकरण के ही है। जिसका आप अनुसरण कर रहे हैं योग दर्शन का, वो भी अंतःकरण की ही वृत्तियां, सब ज्ञान अज्ञान आदि, सब ज्ञान को भी, ज्ञान भी एक वृत्ति आत्मा की होती है, आत्म दर्शन ब्रह्म दर्शन आदि ये भी वृत्ति आत्मा की है। तो ये सब अंतःकरण के ही धर्म है। तो इससे तो ये सिद्ध होता है कि बंध है और मोक्ष जो है ये अंतःकरण का ही माना गया है। आत्मा तो एक प्रकार से मुक्त ही है। जैसे आप परमात्मा को संसार का रचिता होते हुए, कर्ता होते हुए भी उसको आप मुक्त मानते हैं, उसको आप बंधन में नहीं मानते, इसी प्रकार इस शरीर में आत्मा को भी आप उसी की तरह मुक्त मान लेवे और बंधन में न माने, बंधन शरीर का इंद्रियों का और अंतःकरण का मान लेवे तो तुम्हारी भी मुक्ति इस शरीर के रहते हुए और इसी जीवन में हो गई समझो। आत्मा को इन शरीरों से अलग होने के बाद मोक्ष में शुद्ध बुद्ध पवित्र मानते हैं और वहां आनंद आदि की अनुभूति मानते हैं। अगर वैसी ही आप यहां मान लें और ये सब सुख दुख आदि ये सब इंद्रियों के धर्म मान लें अंतःकरण के, देखो अब ये 72 घंटे होने जा रहे हैं क्योंकि एक दिन दो और चार दिन आठ दिन महीना 10 दिन शरीर उत्पन्न हुआ हुआ है, हाड़ मांस आदि का बना हुआ है, आहार के बिना जीवित नहीं रह सकता, जल के बिना ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता, इसने मरना है। तो ये तो धर्म फिर शरीर के होते हैं। जब आत्मा मोक्ष में बिना खाने पीने जल आदि के बिना वहां रह सकता है, तो यहाँ भी इस शरीर में रहते हुए भी आत्मा क्यों ना बिना खाए पिए आदि रह सके, और ये धर्म माने जाए शरीर के, क्योंकि शरीर तो माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होकर के आया है, इसमें तो विनाश होना है। आत्मा तो कहीं से उत्पन्न होकर नहीं आया, मोक्ष में भी आत्मा वैसा ही था और यहाँ भी वैसा ही है। परमात्मा परलय काल की अवस्था में भी वैसा ही रहता है, और अब सृष्टि का सृजन हुआ हुआ है जिसको तुम कहते पालन पोषण रक्षण आदि वो कर रहा है, अब भी उसमें कोई अंतर नहीं आया। जब भगवान में आप परलय काल की अवस्था में सृजन काल की अवस्था में कोई अंतर नहीं मानते हैं, तो इस आत्मा में भी क्यों अंतर मानते हैं? ये जो अंतर मानने वाली बात है, यही अज्ञान है और यही भ्रांति है। उठाएंगे कि जब ये आत्मा ज्ञानी भी है इस वक्त और मुक्त भी है, तो पाप पुण्य धर्म अधर्म की व्यवस्था कैसे होगी फिर? ये माता में और पत्नी में अंतर कैसे होगा, और इस अंतर के मानने की जरूरत भी क्या रहेगी, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। आत्मा मुक्त होने पर भी, तत्व ज्ञान होने पर भी, जो कुछ मर्यादाएं समाज के लिए आचार्यों ने विद्वानों ने नियत की हैं, समाज में रह करके उन मर्यादाओं का पालन करना उचित ही होगा, क्योंकि फिर पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ज्ञानवान में यही अंतर रहेगा, जैसे योगी है, मैं आज से 70-80 वर्ष पहले भी यम नियम का पालन करता था और अब भी यम नियम का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि समाज में रहता हूँ, दुनिया में रहता हूँ, दुनिया की समाज की मर्यादा को पालन करना आवश्यक ही है। तो अब इसको धर्म मान करके वह यम नियम आदि जो है, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य आदि है, बहुत संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर पर निधाना, तो इनको मर्यादा मान करके, धर्म मान करके इनके पालन करते रहना चाहिए, ताकि समाज की व्यवस्था, लोक की व्यवस्था ठीक बनी रहे और सब सुखी बने रहे। जब हम यम नियम आदि को पालन करते हुए सुखी रहते हैं, तो इस प्रकार के धर्म और कर्मों को पालन ही करते रहना चाहिए। पशुओं के भी तो खान पान आदि कुछ स्वाभाविक धर्म रहते हैं ना, तो इस प्रकार ये स्वाभाविक धर्म इंद्रियों के संबंध करके इनका पालन करते रहना चाहिए, ताकि समाज सुव्यवस्थित रह सके। तो यहाँ तो एक प्रकार से ज्ञानी और मूर्ख समान से हो जाते हैं। मैं 70-80 वर्ष पहले मूर्ख था, बच्चा था, अकल कुछ नहीं थी, तब भी यम नियम का पालन करता था। अब 90 वर्ष से ऊपर का हो गया हूं, तो अब भी यम नियम का पालन कर रहा हूं। तो ये मर्यादा, क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत्तो इतरे जना, यदि यद कुरुते प्रमाणम तत्तल लोकानुगम, जो आचरण बड़े गुरुजन माता पिता आदि नेता लीडर जो आचरण अच्छा या बुरा किया करते हैं, वैसा ही आचरण उनके पीछे चलने वाले किया करते हैं। तो हमारे जैसे लोगों का आचरण आदर्शयुक्त ऊंचा ही होना चाहिए, ताकि हमारे पीछे चलने वाले लोग भी कोई श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ आचरण करें। तो श्रेय अच्छे और बुरे की, पाप और पुण्य की मर्यादाओं का ज्ञानी को भी पालन करना चाहिए। जब और खान पीन आदि मर्यादा का, टट्टी पेशाब आदि मर्यादाओं का पालन करता, तो इस मर्यादा का पालन करने में क्यों आपत्ति हो? इनको भी वैसा ही समझ लिया जाए। तो इसलिए कर्मों का परित्याग नहीं होना चाहिए, व्यवस्था का, समाज के धर्मों का परित्याग नहीं होना चाहिए। जो जिस आश्रम में है, उस आश्रम के धर्मों का पालन ही करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य की व्यवस्था अच्छी चलाना चाहते हैं, संसार को सुखी बनाना चाहते हैं, सुखी रखना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो मर्यादाएं बना दी हैं प्राचीन आचार्यों ने, उन नियमों का पालन करते रहने ही से हमारे ज्ञान में कोई हानि नहीं होगी, कोई कमी नहीं, बल्कि ज्ञान दृढ़ बना रहेगा, पुष्ट बना रहेगा, और दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक हमारा जीवन बनेगा। आप मेडिटेशन के लिए सावधान हो जाएं। आज आसन प्राणायाम की तुझ लिए कुछ कार्य करना होगा और सायंकाल को फिर वैसे ही प्रोग्राम चलेगा जैसे है। तो आप अप ध्यान में ये अनुभव करना कि ये जो हमारे शरीर में कर्म हो रहे हैं, अगर तुम्हें आत्मा दिख गया, समझ में आ गया हो, तो ये देखना कि ये आत्मा में कर्म हो रहे हैं कि या बुद्धि या मन में ये कर्म हो रहे हैं या शरीर में ये कर्म हो रहे हैं। वास्तविक में ये ज्ञान और कर्म हमारे शरीर में किसके धर्म है? अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम्हारी बात को हम प्रमाणिक मान लेंगे। ये निश्चय करो कि ये ज्ञान और कर्म और व्यवहार और वृत्तियां किस में उत्पन्न हो रही है। अगर ये आत्मा में ही आप मानोगे तो ये तो सदा उत्पन्न होती रहेगी। अब वहां भी वो समाधि में बैठी है, वहां भी वृत्ति काम कर रही है, वृत्ति का अभाव वहां भी नहीं हुआ। तो वृत्तियों का तो अभाव, संस्कारों का तो अभाव शरीर के रहते हुए होना चाहिए। शरीर के रहने के बाद शरीर ही नहीं रहना तो फिर हमें क्या पता होता है कि नहीं। तो शरीर के रहते हुए तो संस्कारों का अभाव होना नहीं, और संस्कारों का अभाव ही मोक्ष माना जाएगा। तो बेहतर होगा आप संस्कार धर्म चित्त और बुद्धि के मामले में तुम्हारा एक ही जन्म में पीछा छूट जाएगा, वरना पता नहीं और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, उनमें भी नहीं छूटेगा।